ब्रह्मा बाबा का 50 साल ब्रह्मा बाबा के 50 साल हाँ जी और प्रजापिता के वानप्रस्थ अवस्था हाँ जी तो ऑटोमेटिक साबित हो जाता है कि सन 47 से जब कराची में आए सारा संगठन तो मुरली चलना शुरू हुई और मुरली ब्रह्मा के तन से चलाई जाती है या किसी दूसरे के तन से चलेगी। मुरली कहां से निकलती चली आई? कराची से। और कराची का संगठन 46-47 से शुरू हुआ। उससे पहले पीयू की वाणी प्रसिद्ध थी, ब्रह्मा के द्वारा वाणी नहीं चलती थी। वाणी में ऐसे प्रूफ आए हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। इसका मतलब है कि ब्रह्मा सरस्वती में प्रवेश करके वाणी नहीं चलती थी कराची से पहले। तो साबित हो गया कि ब्रह्मा बाबा सन 47 में 7 साल के हुए और उनमें प्रवेश करके शिव बाबा ने वाणी चलाना शुरू किया। जो मुरली में बोला है कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले सारा कारोबार सिंध हैदराबाद में चलता था और सिंध हैदराबाद में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे। मुरली से ये साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन अपने गुरु से भी नहीं मिला, वाराणसी के विद्वानों से भी नहीं मिला। आखिरी भटकते भटकते अपनी गद्दी पर जा पहुंचे। अपने जीवन काल में उन्होंने जिस प्रैक्टिकल व्यक्ति को अपने से ज्यादा समझदार देखा, होशियार देखा, सच्चा देखा, वफादार देखा, उस व्यक्ति को अपनी दुकान सौंप दी। उसके लिए बोला है कि 10 साल से रहने वाला माना सन 26 से ही उनकी दुकान में नौकरी करने वाला था, रहता था। 10 साल से रहने वाला ध्यान में जाती थी, मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी, उनमें बाबा प्रवेश करके दर्शन देते थे। इतना मर्तबा था तो क्या प्रूफ नहीं मिल गया कि ब्रह्मा से पहले कोई और थे जिनमें प्रवेश करके शिव ने वाणी चलाई और शिव वानप्रस्थी अवस्था में प्रवेश करेगा या 50 साल में प्रवेश करेगा? तो सन 36 में जो साबित होते हैं मम्मा बाबा को डायरेक्शन देने वाले, डायरेक्शन माना श्रीमत मुरली, वो 60 साल के थे ये स्वतः ही साबित हो जाता है, प्रूफ मिल जाता है। और ज्ञानामृत में उसके प्रूफ मिलते हैं। सन 87-88 में एक वर्ष अव्यक्त बाप दादा की वाणी भी नहीं चली, क्योंकि ब्रह्मा ने मृत्युलोक का त्याग कर दिया दादा लेखराज ने और अमर लोक में प्रवेश कर लिया। इसलिए वो एक साल का अंतराल भी साबित करता है कि दादा लेखराज की 100 साल की जो ब्रह्मा की एज गाई हुई है वो सन 87-88 में पूरी हुई। अमृत वेले का पुरुषार्थ, प्रातः पूजा, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और एक होती है संध्या की पूजा, प्रातः काल में जो भगवान को स्मरण करते हैं वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन जो प्रातः काल में स्मरण नहीं कर पाए अथवा प्रातः काल में भी स्मृति करें और सायंकाल में भी स्मृति करें तो सायंकाल की पूजा संध्या वंदन कहा जाता है। संग माने संपूर्ण, दी माने बेटी, आ माने आ जाए, जब सूर्यास्त का समय होता है जिसकी यादगार कहां बनी हुई है, माउंट आबू में बनी हुई है सनसेट पॉइंट, वो किस समय की यादगार है, अठारह जनवरी को ज्ञान सूर्य जो ब्रह्मा के तन में उदित होकर के वाणी जिसे वेद वाणी कहें दे रहा था, वो अचानक गुप्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, जब सूर्य उस समय अस्त हुआ तो ब्राह्मण परिवार का कंट्रोल किसके हाथों में आ गया, है संग माने संपूर्ण, धी माने बेटी, आ माने आ गई, उसको कहते हैं माया बेटी। बाप गया, बाप गुप्त हो गया, 68-69 से लेकर के कब तक गुप्त रहा, 76 तक गुप्त रहा, और कौन प्रत्यक्ष हो गई, बेटी आ गई। उस समय का जो पुरुषार्थ है वो भी नंबर दो का पुरुषार्थ है। मुसलमानों में उसे कहते हैं नुमाए श्याम, हिंदुओं में कहते हैं संध्या वंदन। उस माया की भी वंदना करनी पड़ती है, वो चाहे राम वाली आत्मा ही क्यों न हो, लक्ष्मी बनने वाली आत्मा ही क्यों न हो, माया बेटी के सामने ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के नाक रगड़नी पड़े तो वंदना हुई कि नहीं हुई? वंदना हो गई। पटरानी और अष्टदेव दोनों एक हैं। अष्टदेव तो देवता को कहा जाता है, अष्टदेवी शब्द नहीं है। क्या शब्द है? अष्टदेव। और वो अष्टदेव सारे संसार के हर धर्म के पूर्वज है, पूर्व में जन्म लेने वाले, ज माने जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, उनसे पहले और किसी ने जन्म नहीं लिया। चाहे वो आत्मा के पार्ट का जन्म हो और चाहे वो ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में आने का जन्म हो या भगवान का बच्चा बनने का जन्म हो, यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं पहले पहले बाप की बनती हैं, मध्य में भी वो एडवांस ज्ञान लेकर के तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों की 100% बाजी लगा करके बाप की बनती है, औरों का उतना पुरुषार्थ नहीं होगा तो कहेंगे बच्चा बाप का बना माने जन्म लिया, और फिर अंत में सारे संसार के बीच जो हर धर्म के पूर्वज हैं पहले पहले जन्म लेने वाले हैं उनका पाठ सारे संसार के बीच प्रत्यक्ष हो जाता है। हिंदुओं में उनको 8 दिग्पाल कहा गया है, दिग माने दिशाएं, 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उनके कोने हैं, ईशान कोण वगैरह वगैरह। तो 8 दिशाओं के वो अष्टदेव संगम युग में मालिक बनते हैं, अकेला बाप थोड़े विश्व की बादशाही चलाता है। नंबर वाला राज्य अधिकारी भी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। तो 8 दिशाओं को पालने वाले वो 8 दिग्पाल हैं, 8 पूर्वज हैं, और पूर्व में पहले पहले जन्म लेने वाला बाप होता है या माता होती है? कौन होता है? बाप होता है। तो पटराणी नहीं कहेंगे उनको, पटराणी कहेंगे तो रानी तो रचना हो जाती है, और बाप, बाप तो रचयिता होता है, इसलिए अष्टदेवों को पटराणी की लिस्ट में नहीं रखा जा सकता। वो तो असल सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी रुद्रमाला के मणके हैं। ये कोई आंखों से देखने की चीज थोड़े ही है। एक होता है व्यक्त, व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, और एक होता है अव्यक्त। ज्यादा ऊंची स्टेज कौन सी है? अव्यक्त ऊंची स्टेज है, फरिश्ताई स्टेज है। तो फरिश्तों तक जो पहुंच है वो फरिश्ताई स्टेज वाले बच्चों की होगी, या जिनकी बुद्धि दुनियादारी में धरी रहती है उनकी पहुंच हो जाएगी। इसलिए उनकी तो वहां तक पहुंच ही नहीं है, उनकी पहुंच भूत प्रेतों तक है। भूत प्रेत जो होते हैं वो और धर्मों में बनते हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं भूत प्रेत बनती है, क्योंकि वो संगम युग में ऐसे कच्चे ब्राह्मण बनते हैं जो भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को भी नहीं पहचान पाते, और भगवान भगवती के रूप में पार्ट बजाने वाले जो माँ बाप माता पिता हैं, उनके जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं राधा कृष्ण, उनके संपूर्ण स्वरूप को भी नहीं पहचान पाते। तो कृष्ण वाली आत्मा दो रूपों में पार्ट बजाए रही है। एक है निश्चय बुद्धि का पार्ट, राम वाली आत्मा में जब प्रवेश होकर पार्ट बजाती है तो बीज रूप स्टेज बन जाती है निश्चय बुद्धि, और जब अनिश्चय होता है, कोई पॉइंट बुद्धि में नहीं बैठता है, या वो जगत की माता ब्रह्मा कृष्ण वाली मधुरदुल सोल अनेक धर्मों के बच्चों के प्रभाव में आ जाती है, माताएं प्रभावित होती हैं, तो अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, जिसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? है
सूर्य के बीच में आ जाता
है पृथ्वी। हाँ, एक तरफ चंद्रमा, दूसरी तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी। तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। तो पृथ्वी कहो, धरणी कहो, धरणी माताएं कन्याएं कहो, उन कन्याओं माताओं के प्रभाव से वो आत्मा प्रभावित हो जाती है। राम वाली आत्मा के प्रभाव से या शिव की आत्मा के प्रभाव से बाहर निकल जाती है, तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है, और सूक्ष्म शरीर धारण करके गुलजारदादि में प्रवेश करती है। इसलिए वो सूक्ष्म शरीर की प्रवेशता वो उनको देखने में आती है। जो संपूर्ण है बाप दादा ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकारी निर्विकारी स्टेज वाला है, वो उनको देखने में नहीं आता है। तो जब देखने में ही नहीं आता है तो वो मानेंगे कैसे? और
विष्णु
द्वारा पालना, हाँ जी
करा दूंगा मतलब
किसको है? तो विनाश कराए दूंगा, कराए दूंगा माने किसी के द्वारा, तो शक्तियां निमित्त बनती है। शिव कल्याणकारी है वो, ना स्थापना करता है प्रैक्टिकल में और ना विनाश करता, वो कुछ करता ही नहीं, वो तो अकर्ता है। कर्ता कौन है? कोई शरीरधारी है ना, जिसमें प्रवेश करके वो करण करावन हार बनता है, तो कराता है। इसलिए मुरली में बोला है शंकर थोड़े विनाश कराते हैं, शंकर विनाश करावे तो उनके ऊपर दोष आ जावे। इसलिए किसको निमित्त बनाया हुआ है? है शक्तियों को निमित्त बनाया हुआ है।
कौन से बच्चे हैं तंग करने वाले?
हैं
कौन से बच्चे हैं ज्यादा तंग करने वाले?
हाँ, अरे एक तो माया बेटी तंग करने वाली है या नहीं है? हैं? और माया फिर प्रकृति से हाथ मिलाती है, प्रकृति में मुख्य है धरणी, तो धरणी भी कन्या माता है ना, तो वो खुद ही तो है। दुनिया में जब विनाश बरपा होता है तो ज्यादा तंग करने के निमित्त कौन बनते हैं? माया बेटी और प्रकृति के पांच तत्व। और
बाबा का कहना है मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब आठ को ही
पढ़ाना। अब कोई गिनती थोड़ी ही बता दी, तुम आठ बच्चों को पढ़ाता हूँ। समझा जा सकता है कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ने के कारण उनके पूरे पूरे अंक आते हैं, धर्मराज की कोई भी सजा नहीं खाते हैं, उन्हीं को पढ़ाता हूँ।
क्षेत्रियों के लिए ये भी कहा गया है क्षेत्रिया अपने मनमत से विनाश कर रहे
हैं,
क्षेत्रिया अपने मनमत से विनाश कर
रहे हैं। शक्तियों को प्रेरणा मिलती है, इसलिए भक्ति मार्ग में ये गायन है कि शंकर प्रेरणा करते हैं। प्रेरणा करते हैं का मतलब मन बुद्धि की अंत समय में ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी परिपूर्ण स्टेज की कि वो किसी में भी चाहे तो प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा दे और वापस अपने शरीर में प्रवेश कर जाए। ये जो भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, सब में प्रवेश कर सकते हैं क्या? है कमजोर में प्रवेश करेंगे, तो जो कमजोर बना है और भूत प्रेत प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते हैं, वो कौन से जन्म का हिसाब किताब निकाल रहे हैं? 63 जन्मों का हिसाब किताब निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही वो है भूतनाथ, वो तो भूत ही है और वो है भूतनाथ, तो उसका भी हिसाब किताब है 63 जन्मों का। वो अपना हिसाब किताब निकालने के लिए फिर प्रवेश करता है और बुद्धि को घुमाए देता है।
बाबा अभी बताया गया है ज्यादा तंग करने वाले माया और त्रुटि बताए, तो फिर वो दोनों को ही तंग करने वाले और दोनों कैसे विनाश करते हैं?
वो तो स्टेज उनकी जो है वो पत्नी की है, मायापति भी कहा जाता है और प्रकृतिपति भी कहा जाता है, नहीं कहा जाता? कहा जाता है। तो माया और प्रकृति ये तो मां की स्टेज पर बैठे हुए हैं, घर परिवार में अगर स्त्री सलोनी हो, अच्छे स्वभाव संस्कार वाली हो तो कहते हैं घर स्वर्ग बन जाए, और नहीं तो घर नरक बन जाए। तो बच्चों को बनाने या बिगाड़ने का ज्यादा श्रेय किसके ऊपर जाता है? माता के ऊपर जाता है। ये भी बेहद का घर परिवार है। प्रकृति तो जड़त्वमयी बुद्धि वाली है ही, ज्ञान को उतना गहराई से नहीं समझ सकती। इसलिए रावण का जो पुतला बनाते हैं उसमें पांच सिर मंदोदरी के हैं, मंद उदर वाली, बुद्धरूपी पेट इतना विकसित नहीं है जो भगवान बाप को पक्की रीति पहचान सके और आदि से अंत तक सहयोगी बन सके। सहयोगी तो बनती है लेकिन फिर क्या होता है, अंत में धोखा दे देती है, पूरी पहचान न होने के कारण, जड़त्वमयी बुद्धि होने के कारण, और माया उसकी सहयोगी बन जाती है। ज्ञानी तू आत्माओं को माया कंट्रोल नहीं कर पाती है। कंट्रोल किसे करती है? जो कमजोर बुद्धि वाले होते हैं। आज भी मुरली में बताया, बुद्धि की सारी बलियारी है। जब प्रजापिता राम वाली आत्मा है और राम ही रावण बनता है तो क्या बड़ी बात हो गई? हाँ तो ऐसे ही ये भी बनता है। शिव जब ऊपर से आता है तो शिव है पुरुष, और जिसमें प्रवेश करता है पहली पहली बार वो पुरुष है या उसके लिए स्त्री है? वो पहला नंबर का प्रकृति हो गया, और वो ऊंचते ऊंचे प्रकृति है। उसको शास्त्रों में नाम दिया है, वेदों में द्यावा पृथ्वी, द्यावा माने आकाश और पृथ्वी माने माता। वो बाप है और वो माता है।
राम वाली व्यक्ति को ऐसे कोई से पॉइंट से पता चला वही नारायण?
एक पॉइंट से पता चलता है, विश्वास होता है, या बाप की पहचान के ढेर पॉइंट है? हाँ, बाप की पहचान का एक ही पॉइंट है या ढेर के ढेर पॉइंट है? मुरली में आता है ये बात, बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, आता है ना? तो जहां ये शब्द आता है वहां उस बात की गहराई को पकड़ो, उसकी गहराई में जाओ कि ये बात समझाना किसने शुरू किया, वो पर्सनालिटी कौन है, तो बाप साबित हो जाएगा। तो ऐसे ढेर के ढेर महावाक्य हैं जिनसे वो एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी, राम बाप साबित होती है।
फरुखाबाद की तरफ हमारे
ढेर की ढेर पॉइंट, एक एक पॉइंट की बात नहीं है।
ऐसा भी कहा गया है कोई ना कोई नींद लगी जाए, मतलब वो नींद लग गए थे नशा बढ़ जाती है, वैसा ही कोई पॉइंट लग चुका होगा उसी के कारण आपसे पॉइंट बता दे रहा
हूँ। तुम बच्चे अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कर्मों से, अपने हर प्रकार के जो वातावरण बनाना है उस वातावरण से अपने पार्ट को साबित करेंगे। तो क्या 76 में ही साबित होता है या उससे पहले से ही जब से बेसिक नॉलेज में वो आत्मा आती है तब ही से साबित होने लगता है? हाँ, जो और ब्राह्मण हैं वो मुरली के महावाक्यों को जैसे जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने समझाया वैसे ही समझते हैं, और राम वाली आत्मा उस तरह से नहीं समझती, वो अपने तरीके से ही उस बात की गहराई को समझेगी। तो कोई एक टाइम नहीं है, एक पॉइंट नहीं है। विजयमाला नाम क्यों पड़ा, किस बात पर विजय है? विकारों पर विजय के कारण विजयमाला नाम पड़ा। माला माने संगठन, पांच विकारों पर जन्म जन्मांतर की विजय पाने वाली कोई आत्मा है या नहीं है? कौन है? लक्ष्मी, जिसके लिए अभी भी ऑर्डर दिया है कि विजयमाला का आवाहन करो। तो राम वाली आत्मा को ये जानना मुश्किल है क्या कि विजयमाला का हेड कौन है? हाँ जी, तो मुरली का पॉइंट है ना, जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, पॉइंट नहीं है क्या? फिर और भक्ति मार्ग में सोमनाथ मंदिर जो है वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाला पहला मंदिर है। सोमनाथ मंदिर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई शूटिंग हुई होगी, उसके लिए बोला है सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में सोमनाथ कहाँ है वो क्लियर नहीं हो रहा है? फिर वहां सोमनाथ कौन है? जब कोई मंदिर बनाया जाता है तो पहले उसमें मूर्ति रखी होती है या पहले मंदिर बनता है बाद में मूर्ति की स्थापना की जाती है? क्या होता है? पहले मंदिर बनता है, मंदिर बनने के साथ साथ कहीं मूर्ति भी तैयार होती है दूसरी जगह, मूर्ति को लाते हैं और फिर मंदिर में स्थापन करते हैं। इतने से ही काम नहीं चलता, फिर भक्ति मार्ग में दिखाते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, माने मंदिर भी पहले से ही था, मूर्तियां भी पहले से ही थी, और वो मूर्तियां लाई जाती हैं और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, माने उनको अपना निश्चय होता है। किनको? मूर्तियों को। लक्ष्मी को ये पक्का निश्चय होता है मैं लक्ष्मी बनूंगी, और नारायण को ये निश्चय होता है कि मैं नारायण बनूंगा। अब वो ज्ञान के आधार पर निश्चय हो या साक्षात्कार के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर निश्चय हो, तो सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी। इस बात से क्लियर नहीं हो जाता है?
राम
वाली आत्मा कहाँ बोलती है अपने मुंह से? बोलती है क्या राम वाली आत्मा अपने मुख से बोलती है? कहीं कहीं है प्रूफ कि मैं राम हूँ, कि मैं शंकर हूँ, कि मेरे में शिव बाबा आता है? हाँ, मैं नारायण वाली आत्मा हूँ, मैं नारायण बनूंगा, ऐसा कहीं बोला? ऐसा कहीं लिख करके कोई चिट्ठी दी किसी को, कोई ईमेल भेजा क्या? आपके पास ईमेल आया होगा तो किस आधार पर कहते? क्या है वार्तालाप? कैसा है?
वही तो मैं अभी बता रहा हूँ। जैसे राम वाली आत्मा अपने पार्टी को अपने मुख से बोला, वैसे ही तुम सब बच्चे बोलेंगे।
तो राम वाली आत्मा ने अपने मुख से किस रूप में बोला? तो उसको गहराई तो समझो, किस रूप में बोला? हद के रूप में बोला। कोई कोई आत्मा ऐसी होती है, मेरा शिवाजी का पार्ट है, मैं महाराष्ट्र में पैदा हुआ हूँ, बोलते हैं ना। तो एक तो ये कहना होता है, और एक होता है ज्ञान के आधार पर सारी बात क्लियर कर देना। कोई पकड़ नहीं सकता कि ये अपने को शिव ओम कह रहा है। तो ज्ञान की बेहद की बात ही कुछ और है। बेहद का बाप एक ही है, मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप एक ही है, बाकी सब क्या है? हद के हैं। हाँ जी, और
बाबा किस रूप में बोला गया?
क्या आपको? अब वो सबसे पूछो, आप अपना तो पहले बताओ, आपने किस आधार पर निश्चय पत्र लिख करके दे दिया स्टाम्प पेपर पर? ज्ञान के आधार पर। ऐसे ही सबका भी अपना अपनी बुद्धि है, अपना अपना प्रकार से ज्ञान समझने का आधार है।
और
वेद की भी गुले गुलजार होगी। कमला नगर जो पहला सेंटर है दुनिया का, उसकी इंचार्ज होगी। दिल्ली का पहला सेंटर है कमला नगर, और उस कमला नगर सेंटर का मुख्य भाई कौन था? अरे कौन था? अरे जब कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ तो वहां का कोई मुख्य भाई भी रहा होगा, या गुलजार दादी ही इंचार्ज थे और कोई भाई नहीं था? जगदीश भाई था, वो हद का जगदीश और ये बेहद का जगदीश, वो हद की कमला और ये बेहद की कमला। गुले गुलजार का मतलब ये है कि अपने जीवन काल में ब्रह्मा कुमारियों के बीच में, जो वर्तमान ब्रह्मा कुमारियां हैं, उन ब्रह्मा कुमारियों के बीच में गुलजार दादी का दुनिया ब्राह्मणों के बीच में इतना मर्तबा नहीं हो पाया। इतना ब्राह्मणों की दुनिया को गुलजार नहीं बना पाया, उससे कई गुना ज्यादा गुले गुलजार ब्रह्मा की सोल जिस ब्रह्मा कुमारियों के बीज में प्रवेश करेगी अंत में, वो सारे संसार को कंट्रोल करेगी, सारे ब्राह्मणों की दुनिया को। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया है बेसिक में भी बहुत छोटी है, नहीं तो मुरली में बताया है तुम्हारे सेंटर्स लाखों की तादाद में हो जावेंगे। अभी हुए हैं? नहीं हुए। करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी, अभी छप रही है। तो वो इस समय भी आवेगा और उस समय कोई ब्रह्मा कुमारी गुले गुलजार करने वाली भी होगी। क्या और
एक पर्सनल ऑर्डर हमने कहा है, मम्मी ने ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके उनको अज्ञानी बनाया
है।
मम्मी ने ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके अज्ञानी बनाया।
अज्ञानी
पर्सनल
ऑर्डर मम्मा है, बड़ी मम्मा है रुद्रमाला का मणका। रुद्रमाला का मणका भले लास्ट नंबर का हो तो भी बुद्धिमान बाप बुद्धिमानों की बुद्धि, जो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप है उसकी संतान कही जाएगी। कही जाएगी या नहीं? कही जाएगी। और जो बाकी मालाएं हैं, चाहे वो इस्लामियों में घुमाई जाने वाली माला हो, चाहे वो बौद्धियों में घुमाई जाने वाली माला हो, चाहे चंद्रवंशियों में घुमाई जाने वाली विजय माला हो, वो सारी मालाएं रुद्रमाला के उस आखिरी मणके के मुकाबले कम बुद्धि वाली होंगी या ज्यादा बुद्धि वाली होंगी? क्योंकि डायरेक्ट बाप के बच्चे नहीं है। फिर मम्मा बाबा तो सत्युग में जाकर के जन्म लेने वाले हैं, वो तो ब्राह्मणों की दुनिया की जो माला बनती है उसमें पहला नंबर नहीं है किसी माला में, वो सत्युग में जाकर के पहले दूसरे पत्ते बनेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा को मुरली में 20 जगह बोला है ब्रह्मा है बेबी बुद्धि है, माने बच्चा बुद्धि है और मां का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। जब बच्चा बड़े बड़े काम करने लग पड़ता है या बच्चे का प्रभाव मां के ऊपर पड़ता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है बड़े बड़े काम करता है तो बच्चे का प्रभाव मां के ऊपर पड़ता है या मां का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है? माँ का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगर माँ का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता होता तो आज घर घर में गीता का भगवान कृष्ण बच्चे बनकर के बैठे हुए ना होते। आज हर घर घर में माताओं के ऊपर जो बच्चे हैं वो गीता का भगवान बनकर के कंट्रोल कर रहे हैं, पति बनकर के बैठे हुए हैं माता के ऊपर। तो माता प्रभावित होती है बच्चों से या बच्चे प्रभावित होते हैं माता से? है, माता प्रभावित होती है बच्चों से।
ब्रह्मा
वाली
सोच
दुर्गा
प्रवेश करे तो
उनका
असर ऐसा नहीं होना,
उनकी तो आत्मा ही गुम हो जाती है।
ये नहीं कहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मोदी की पॉइंट को घटती हुई बता रहे हो, तो ये कैसे माना जाए उनका।
हाँ बोलो 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 बोलो, कहाँ रुक गए? हाँ
ब्रह्मा की वाली मतलब ब्रह्मा वाली सोच दुर्गा जाति में प्रवेश करती है, ऐसा कोई भी पॉइंट क्रांस करते हुए बता ही नहीं जाती है, तो फिर उसी प्रकार जगन्मा प्रवेश किया तो उनका ज्ञान ही कह दिया, जब बुद्धा जगह प्रवेश करे तो
हाँ होगी बात। दुनिया में एक तो आत्मा अपने पूर्वजन्म के संस्कार लाती है, जीवन में उन संस्कारों का भी प्रभाव होता है ना, और दूसरा जिस परिवार में आत्मा जन्म लेती है उस परिवार के संस्कारों का भी प्रभाव रहता है बच्चे के ऊपर, दोनों प्रकार का प्रभाव होता है ना। तो गुलजार दादी बचपन से ही ब्राह्मणों के वातावरण में पली है, वो विजयमाला का परिवार है, खास करके जहां से विजय माला निकलती है। कैसी माला? विकारों के ऊपर पहले से ही विजय पाने वाली माला, जन्म जन्मांतर उसने ऐसा पार्ट बजाया है उस माला में कि विकारों के ऊपर विजय साबित होती है। और रुद्रमाला के मणके कहां पलते हैं? आश्रम के पवित्र वातावरण में पलते हैं या घरग्रस्त की कीचड़ में पलते हैं? कहां पलते हैं? घरग्रस्त की कीचड़ में पलते हैं। तो कीचड़ में पलते हुए वातावरण का असर उनके ऊपर नहीं होगा, प्रभावित नहीं करेगा, करेगा। इसलिए गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है वो वाणी इतनी गहरी याद में रह करके चलती है कि जैसे द्वापर के आज में कवि होते थे, वो भाव विभोर होकर के कविता करते थे तो उनकी कविता में सच्चाई भर जाती थी, ऐसे ही गुलजार दादी में जो वाणी चलती है याद की स्टेज में रह करके वो ब्रह्मा की वाणी ईश्वरीय याद पक्की होने के कारण मुरली से पूरी पूरी टैली होती है। एक भी वाक्य व्यक्त वाणी का ऐसा नहीं है जो मुरली के महावाक्यों को क्रॉस करता हो, जबकि जगदम्बा में जो प्रवेशता होती है वो ब्रह्मा की सोल बीज रूप में प्रवेश करती है या सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है, किस रूप में प्रवेश करती है? नहीं सूक्ष्म रूप में, तो सूक्ष्म शरीर से तो गुलजार दादी में प्रवेश होता है, बीज रूप स्टेज हो जाती है। जैसे राम वाली आत्मा में प्रवेश करती है तो राम जैसी बीज रूप स्टेज बनेगी, और रुद्रमाला के आखिरी मणके में प्रवेश करेगी तो आखिरी मणके की जैसी बुद्धि होगी, मंद बुद्धि मंदोदरी, वैसी ही बीज रूप स्टेज बनेगी। जैसे अभी बेसिक नॉलेज में चलने वाले बी के लोगों को एडवांस का हर पॉइंट उल्टा दिखाई पड़ता है, ऐसे ही बेसिक नॉलेज में चलने वाले जो भी वीकेज है उन वीकेज की अम्मा कौन साबित होती है रुद्रमाला में? कौन है अम्मा? जगदम्बा। उसको तो हर पॉइंट उल्टा दिखाई पड़ेगा,
बाबा नाग बाप की तो पढ़ाई पूरी हो गई, इसी शिक्षक उनके चेतनी में बीज रूपी स्टेज में प्रवेश करता है, क्योंकि जगराम बाबा तो अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है ना,
ठीक है,
तो फिर उनके शरीर में बीज रूपी स्थिति में कैसे प्रवेश।
अरे रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है या विजय माला ज्यादा पावरफुल है, आपके किस स्टेज के आधार पर रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है, तो जो रुद्रमाला ज्यादा पावरफुल है उसमें नंबर वार मणके हैं या एक जैसे मणके हैं?
नंबर वार।
तो राम वाली आत्मा की जो बीज रूप स्टेज बनेगी वो आखिरी मणके की वही बीज रूप स्टेज बनेगी, अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
पड़ेगा,
बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर, वो है धरणी और वो है आकाश, वो है द्यावा और वो है पृथ्वी, उसको कहते हैं रात दिन का अंतर, जमीन आसमान का अंतर। और कौन कहते हैं ब्रह्मा बाबा को बेबी बुद्धि कौन कहते हैं? शिव बाबा। अब आगे बोलो।
डॉक्टर, जो मुझे को पूरा समझ नहीं पा रहे साधा में, तो अधिक रूप में जब ऊर्जा गाती है प्रवेश करके पानी सुनाते हैं तो क्रॉस ये देना कैसे बताते हैं, क्योंकि मुझे के सागर पॉइंट को भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए,
नहीं समझ पाए, क्योंकि जो भी सत्युग में जन्म लेने वाले देवताएं हैं उन देवताओं में वो अव्वल नंबर देव आत्मा है या द्वयम तेम चौवे अपाद वाली आत्मा है, है? अव्वल नंबर देव आत्मा है, जो अव्वल नंबर देव आत्मा होगी वो वाणी चलाएगी तो दिव्यगुणों की वाणी उसमें ज्यादा होगी या ज्ञान की वाणी ज्यादा होगी, इसलिए अव्यक्त वाणी सारी की सारी दिव्य गुणों से भरपूर है, और दिव्य गुणों के बारे में जो भी ज्ञान है ईश्वर का सुनाया हुआ उससे पूरी टैली होती है। एडवांस का क्लैरिफिकेशन
अव्यक्त वाणी में रहेगा
क्यों नहीं रहेगा, चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो चाहे प्रोज हो चाहे पोएट्री हो, टीचर तो दोनों की ही व्याख्या करता है, दोनों को ही क्लेरिफाई करता है।
और बाबा एक भिलाई की वार्तालाप में कहा है ब्रह्मा के तल से बीजियों उंगलियां बहुत चलाए पर एक भी समझ नहीं पाया, एक भी पॉइंट समझ नहीं पाया है, फिर वो एक भी पॉइंट नहीं समझ नहीं पाया तो धारणा कैसे किया, और उनको धारणा
कहाँ धारणा किया, धारणा किया होता तो हार्ट फेल क्यों होता
है बाबा, धारणाओं का
इसका जवाब दो पहले एक बात का, अगर धारणा की होती पक्की पक्की ईश्वरीय ज्ञान की वाणियों की तो हार्ट फेल हो सकता है?
नहीं हो सकता,
नहीं हो सकता। मुरलियों में ज्ञान का जो भी भंडार है उस भंडार का सार है बाप की पहचान, क्या सार है?
बाप की पहचान,
बाप की पहचान, तो बाप की पहचान ब्रह्मा की सोल को कितनी हुई, हुई
अभी तक नहीं,
तो फिर सारी सारा चौपट हो गया,
तो फिर बाबा की आदत है उसको धारणा होकर राजा धर्मराज परिवर्तन,
वो जब ज्ञान ले लेगा तब,
अभी नहीं कहेंगे,
जब गीता का भगवान पहचान लेगा तब,
अभी नहीं कहेंगे,
अभी धर्मराज बन गया, धर्मराज का लकब मिल गया,
तो फिर उनको राइट हैंड, धर्मराज मेरा राइट हैंड भी बोल रहा है,
हाँ धर्मराज मेरा राइट हैंड है, सलोना बच्चा है, तो थोड़ा ही सलोना बच्चा।